अब हम शिक्षाशक के चौथे श्लोक पर विचार करते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तु की त्वयि। हे जगदीश, हे जगन्नाथ, त्वयि भगवती ईश्वरे मम जन्मनि जन्मनि अहेतु की हेतु रहिता शुद्धा भक्ति भवताद् भवती इति अर्थः। धनम स्वर्ण रत्नादिकम्, जनम परिचारिकादिकम्, सुंदरीम अप्सरा सदृशी भार्यादिकम्, कविताम काव्य रचना शक्तिम न कामये न याचे हम इति अर्थः। हे जगदीश, मैं तुम्हारे चरणों में धन की याचना नहीं करता, जन की याचना नहीं करता, सुंदरी पत्नी अथवा सालंकार कविता की कवित्व शक्ति की याचना नहीं करता। मेरी एकमात्र प्रार्थना यही है कि हे ईश्वर, तुम में जन्म जन्म में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। यह है लालसामय प्रार्थना। प्रत्येक भक्तों का अधिकार है श्री भगवान से उनकी भक्ति की याचना करें, क्योंकि वास्तव में भगवान के पास ही सामर्थ्य है कि वह अपने भक्ति अपने प्रेम को दे सकते हैं। तो भक्त जब अत्यंत विनीत भाव में आता है, अत्यंत नम्र भाव में आता है, तो भगवान के पास निवेदन करता है। जैसे संसारिक लोग संसारिक विषयों की कामना अनेक देवी देवताओं से करते हैं, वैसे ही भक्त अपनी भक्ति के वर्धन के लिए श्री भगवान से प्रार्थना करता है। मानो भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त भाव में अपने भक्ति के वर्धन के लिए भगवान से लालसामयी प्रार्थना करते हैं। और वो भक्ति किस रूप में हो, जो हेतु रहिता, बिना कारण के, केवल कृष्ण के लिए कृष्ण की भक्ति करना, यह है कृष्ण के चरणों में अहेतु की भक्ति, तत्सुख सुखित्वम की भावना। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये। हे जगदीश, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, और न सुंदरी पत्नी चाहिए। कवितम यानी विद्वता, सालंकार कवित्व शक्ति की याचना नहीं करता। मोक्ष चाहिए, कहते नहीं, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, मेरा बार बार जन्म हो, मोक्ष पद नहीं चाहता, निर्वाण पद नहीं चाहता, मैं जन्म पर जन्म चाहता हूँ। लेकिन हे नाथ, प्रत्येक जन्मों में आपकी हेतु की भक्ति चाहिए, हेतु रहिता भक्ति, भक्ति के लिए कोई दूसरा कारण न हो, केवल आपको प्रसन्न करने की मेरी भावना होनी चाहिए। इसको बांग्ला के पयारों में आस्वादन किया गया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि महाप्रभु भगवान से लालसामयी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, धन जन नाहीं मांगो कविता सुंदरी शुद्ध भक्ति देह मोरे कृष्ण कृपा करी। धन जन नाहीं मांगो, हे जगदीश, तुम्हारे चरणों में मैं धन जन के लिए प्रार्थना नहीं करता। कविता सुंदरी माने सुंदरी कविता, सालंकारा कविता, लोगों के चित्त को मुग्ध कर देने वाली कवित्व शक्ति के लिए भी प्रार्थना नहीं करता। अथवा कविता एवं सुंदरी अलग अलग करते हैं, कवित्व शक्ति एवं सुंदर स्त्री के लिए भी प्रार्थना नहीं करता। शुद्ध भक्ति अर्थात, हे कृष्ण, कृपा करके तुम मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करो, यही तुम्हारे चरणों में मेरी प्रार्थना है। हे जगदीश, जो कोई इच्छा करके जो कुछ चाहे उसको तुम वही सब कुछ दे सकते हो, परंतु हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में और कुछ नहीं चाहता, केवल अहेतु की शुद्धा भक्ति चाहता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों में धन रत्नादि की प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि धन मद से मत होकर जीव तुम्हारे संबंध में अंधा हो जाता है, तुम्हारी बात भूल ही जाता है। महारानी कुंती कहती हैं कि आपका नाम भी नहीं लेता, धन के मद में मतवाला होकर आपके नाम आपके गुण का स्मरण नहीं करता। जन पुत्र कन्या परिचारक आदि की भी प्रार्थना नहीं करता, क्योंकि पुत्र कन्या आदि मिथ्या वस्तुओं में अभिनिवेश उत्पन्न हो जाता है और सत्य वस्तु आप से व्यक्ति दूर हो जाता है। इसलिए हे नाथ, मैं इस प्रकार की मिथ्या अभिनिवेश नहीं चाहता। मनोरम काव्य रचना की शक्ति, नाना अलंकार मैं काव्य रचना की शक्ति भी मैं नहीं चाहता। मैं लोगों के द्वारा वाहवाही नहीं चाहता। कई बार कवि सम्मेलन में देखने को मिलता है, आप लोगों में से कई लोगों को कवि सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला होगा। उस कवि सम्मेलन के मंच पर कवियों के अंदर जो वाहवाही की प्रकट भावना दिखती है वो अद्भुत है। कोई भी कवि कविता पाठ करते समय श्रोताओं से यही अपेक्षा रखता है कि लोग वाह वाह करें। यदि नहीं कर पाते तो उस मंच पर बैठे हुए कवि लोग ही कविता की प्रथम पंक्ति में ही कह उठते हैं, वाह वाह क्या बात है, कमाल हो गया। इस तरह की भावना प्रकट देखी जाती है कि उनके मन में वाहवाही की लालसा होती है। कभी कभी ऐसे अलंकारिक चमत्कारिक भावों को प्रकट करते हैं अपने कविता में कि वाहवाही मिलती ही है। तो इस प्रकार की भावना लोगों के अंदर होती है, इससे वृथा गर्व बढ़ता है, घमंड बढ़ता है, वृथा आवेश छा जाता है कि मैं कुछ हूँ, मैं विद्वान हूँ, लेकिन हे नाथ मैं ये सब नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ केवल शुद्धा भक्ति, अहेतुकी भक्ति। हे परम करुण कृष्ण, तुम कृपा करके वही करो जिससे जन्म जन्म में तुम्हारे चरणों में मेरी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। केवल आपके चरणों में अहेतुकी भक्ति, जिस भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका चरण, केवल आपकी प्रेमा भक्ति चाहिए। मम जन्मनी जन्मनी से स्पष्ट होता है कि शुद्ध भक्त जन्म मृत्यु से परित्राण पाने की प्रार्थना नहीं करता। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के चरणों में ऐसी प्रार्थना करते हैं, हे नाथ मेरे सहस्त्रों जन्म हो, लेकिन प्रत्येक जन्मों में आपकी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। विष्णु पुराण का श्लोक है, नाथ जन्म सहस्त्रेशु जेसु जेसु भवाम्यहम् तेसु तेसु अच्युता भक्ति अच्युतास्ति सदा त्वयि। हे प्रभु, मेरे कर्म फल के अनुसार सहस्त्रों जोनियां मुझे प्राप्त हो, जहाँ जहाँ मैं भ्रमण करूँ हे अच्युत, वहाँ वहाँ सर्वदा तुम्हारे चरणों में मेरी अच्युता अविचल भक्ति बनी रहे। श्रीमद् भागवतम में छठवें स्कंद के 11वें अध्याय में वृत्रासुर का उद्गार व्यक्त हुआ है, जो युद्ध स्थल में एकाएक भगवान शंकरषण के चरणों का स्मरण करते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण उद्गार को व्यक्त किया है। अपने अंतिम उद्गार में वृत्रासुर कहता है, ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्मजदार गेहेषु आसक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। हे उत्तम श्लोक, मैं अपने कर्मों बस इस संसार चक्र में भ्रमण करता रहूं कोई बात नहीं, मुझे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलना चाहिए, लेकिन हे नाथ आपसे मेरी यह कामना है, यह अपेक्षा है कि मुझे चाहे किसी भी जोनी में जाना पड़े अपने कर्मों के बस होकर कोई बात नहीं, लेकिन हे नाथ आपके भक्तों से मेरी सख्य बनी रहे, आपके भक्तों से मेरी दोस्ती बनी रहे, जिससे मैं आपकी भक्ति अबाध गति से करता रहूं। हे प्रभु, कभी भी ऐसे लोगों के साथ मेरा संग मेरी दोस्ती न हो जिनका चित संसार में स्त्री पुत्र परिवार में लगा हो। चाहे शरीर जो भी मिले, कोई भी जोनी प्राप्त हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपकी भक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए भक्ति के प्रवाहक भक्तों का संग मुझे अवश्य मिलना चाहिए, जो भक्ति को बनाए रखते हैं, ढोकर चलते हैं, ऐसे भक्तों का साथ मुझे मिले जिससे मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तो इस प्रकार यहाँ जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने की भी प्रार्थना नहीं किया गया। स्व सुख वासना अथवा अपनी दुख निवृत्ति की वासना नहीं है। जहाँ अहेतुकी भक्ति की बात आती है वहाँ स्व सुख वासना नहीं है, क्योंकि स्व सुख वासना शुद्धा भक्ति के प्रतिकूल है। जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने की प्रार्थना में स्वसुख वासना अथवा अपनी दुख निवृत्ति की वासना है, यह निश्चित रूप से सुधा भक्ति के प्रतिकूल है। धन जन कविता आदि की प्रार्थना में भी अपना सुख भोग ही लक्ष्य रहता है, इससे भी सुधा भक्ति नहीं हो पाती, यह भी सुधा भक्ति के प्रतिकूल है। सुधा भक्ति में श्री कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और कोई कामना नहीं रहती। तत् सुख सुखित्वम्, श्री कृष्ण सेवा की कामना में यदि अपने सुख और दुख निवृत्ति की अभिलाषा रहे तो वैसी कृष्ण सेवा कामना भी सुधा भक्ति के प्रतिकूल है। जब तक चित्त में भुक्ति मुक्ति की स्पृहा रहेगी तब तक सुधा भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक लिखते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। भुक्ति मुक्ति की स्पृहा रूपी पिशाचिनी जब तक हृदय में वर्तमान है तब तक उस अंतःकरण में भक्ति सुख का अभ्युदय कैसे हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। जिस चित्त में भोग की कामना है, मुक्ति की कामना है, उस चित्त में भक्ति के सुख का अनुभव नहीं हो सकता। चित्त कामनाओं से वासनाओं से दूषित रहता है। कृष्ण भक्ति के लिए चित्त की शुद्धता की आवश्यकता है, इसीलिए महाप्रभु चित्त शुद्धि के उपाय प्रथम श्लोक में बतलाए कि नाम संकीर्तन करके चित्त के गंदगी को दूर करना चाहिए। वास्तव में जब तक चित्त में विषयों की वासनाएं हैं, विषयों की कामना है, तब तक चित्त अशांत रहता है। ऐसे अशांत चित्त में कृष्ण का स्मरण नहीं हो सकता। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कृष्ण भक्त निष्काम होता है, उनको संसारिक कामनाएं नहीं होती। भुक्ति मुक्ति सिद्धि की जो कामना रखता है वो निश्चित रूप से अशांत रहता है। जिसको बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, वो दिन रात परिश्रम करे, कंपटीशन की तैयारी करे, करना ही पड़ता है। जब कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए उसे परिश्रम करना पड़ेगा। जिसे विधायक बनना है, मंत्री बनना है, उसको तत्रूप कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, उसका चित्त अशांत रहेगा। और जिसके चित्त में केवल कृष्ण प्रीति विधान की लालसा है वह निश्चित रूप से शांत होगा, क्योंकि कृष्ण प्रीति कृष्ण प्रेम अप्राकृत दिव्य वस्तु है, उसमें प्राकृत हलचल की कोई अवकाश नहीं, इसलिए वह व्यक्ति शांत रहता है। वह सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, क्योंकि वो आध्यात्मिक वस्तु है। आध्यात्मिक वस्तुओं में, आध्यात्मिक स्थिति में कोई संसारिक टेंशन, संसारिक कामना नहीं रहती। यह सुख अप्राकृत है, अलौकिक है, दिव्य है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की लालसा भक्त भाव में कर रहे हैं। प्रत्येक भक्त का कर्तव्य है कि अपने भक्ति के लिए भगवान से लालसामयी प्रार्थना करे। हमारे आचार्यों ने इस प्रकार के लालसामयी पदों को गाया है, प्रार्थना किया है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इत्यादि। तो जिनमें काव्य क्षमता नहीं है, कविता करने की शक्ति नहीं है, उन भक्तों को इन आचार्यों के द्वारा रचित कविताओं का पाठ भगवान के सामने करनी चाहिए, लालसामयी प्रार्थना करनी चाहिए। यह प्रत्येक भक्त का अधिकार है। इससे हमारे भक्ति का परिमार्जन होता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और कृपा करके अपनी सुधा भक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह से इस श्लोक को हम इस रूप में समझने का प्रयास करें कि हे प्रभु, आप कृपालु हैं, दयालु हैं, सर्वसमर्थ हैं, आप चाहें तो हमारी संसारिक वासनाओं को नाश कर दें और अपने चरणों में सुधा प्रेमा भक्ति प्रदान करें। आप सर्वसमर्थ हो, हम अपने प्रयास से, अपने कर्तव्य से आपकी भक्ति नहीं कर सकते। हे दीन दयालु, हे पतित पावन, हे करुणा सिंधु, आप कृपा करके अपने चरणों की सुधा भक्ति प्रदान कीजिए। जो आपके भक्ति के अवरोधक तत्व हैं, संसारिक उपलब्धियां, संसारिक लोग, ये सब हमें नहीं चाहिए। जहां आपके भक्ति में थोड़ा सा भी रुकावट अवरोध प्राप्त हो उसको हम नहीं सह सकते, क्योंकि हमें आपके चरणों की लालसा है, आपकी सुधा भक्ति चाहिए। इसलिए हे प्रभु दया कीजिए, आपके दया से ही ये संभव है। इस प्रकार की प्रार्थना हमें अवश्य करना चाहिए। जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण, जय श्री राधे।